सोचना चाहिए कि पेशगोईयां छह सूरतों से बाहर नहीं होती। एक, या अपनी जात के मुतालिक, दो, या अपनी बीवी के मुतालिक, तीन, या अपनी औलाद के मुतालिक, चार, या अपने दोस्तों के मुतालिक, पांच, या अपने दुश्मनों के मुतालिक, छह, या दुनिया की और किसी चीज या इंसान के मुतालिक। सो ये तमाम किस्मों की पेशगोईयां किताब बराहीन अहमदिया और इश्तिहार 20 फरवरी 1886 और हाशिया मुतालिका सफा 3 इश्तिहार 20 फरवरी 1886 मंदरजा आईना कमालात इस्लाम और जमीमा रिसाला अंजाम आथम सफा 58 और रिसाला अंजाम आथम सफा 282 और इजाला एहाम में दर्ज हैं और नीज इश्तिहार 21 दिसंबर 1896 में भी, जिसमें ये पेशगोई थी कि जलसा मजाहब में हमारा मजमून गालिब रहेगा, जिसकी तस्दीक सिविल मिलिट्री गजट और ऑब्जर्वर ने भी की। ऐसा ही किताबुल बरियत में भी, जिसमें एक पेशगोई डॉक्टर मार्टिन हेनरी क्लॉक के मुकदमे से बरी होने की निस्बत है। ये तमाम पेशगोईयां अगर तफसीलन लिखी जाएं तो एक दफ्तर बनता है। ये भी याद रखना चाहिए कि हर एक पेशगोई की कदर मंजिलत देखने के लिए ये भी देखना जरूरी होता है कि वो पेशगोई किस वक्त और किस जमाने में लिखी गई। मसलन चार लड़कों के पैदा होने की निस्बत ऐसे वक्त में पेशगोई करना जबकि उनमें से एक लड़का भी मौजूद न था, और साथ इसके ये पेशगोई करना कि अब्दुल हक नहीं मरेगा जब तक चौथा लड़का पैदा होना न सुन ले, क्या ऐसी पेशगोई करना इंसानी ताकतों में दाखिल है? अगर है तो कोई इसका मुकाबला करके दिखला दे। ऐसा ही जब ब्राहीन अहमदिया में ये इल्हाम शाया किया गया कि मैं तुझे एक नामवर इंसान बनाऊंगा और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत डालूंगा और दूर दूर से लोग तेरे पास आएंगे और दूर दूर से तेरे आराम की चीजें तुझे पहुंचाई जाएंगी। इस जमाने को अब 20 बरस गुजर गए और ये आजिज उस वक्त एक ऐसा गुमनाम आदमी था कि बजोज ऐसे दो चार आदमियों के कि जो मेरे बाप के वक्त से मेरे रूह आशना थे, और कोई भी पंजाब और हिंदुस्तान से मुझको नहीं जानता था और ना मुझसे हमदर्दी और दोस्ती का ताल्लुक रखता था। फिर बाद इसके इस पेशगोई के मुताबिक अब लाखों इंसानों बल्कि करोड़ों में मैं मशहूर किया गया और कई हजार आदमी मुझसे हमदर्दी और दोस्ती और इखलास का ताल्लुक रखने वाले पैदा हो गए और हिंदुस्तान के किनारों तक बल्कि बरमा और बंदरबास और मद्रास और बुखारा और हैदराबाद और अफ्रीका और काबुल के मुल्क से अनवाओ अकसाम के तोहफे लोगों ने भेजे
और मेरे सिलसिले के लिए बहुत से रुपए से मदद की और हमेशा करते हैं।
बस ये मुकाम रिकत और वजद का है कि क्यों कर इस वक्त उस जमाने की पेशगोईयां जबकि मैं एक हेच और जलील चीज की तरह इस जंगल में पड़ा था, नहायत कर्रफर और शान शौकत से पूरी हो गई। अपने दिलों में गौर करो और अकलमंदों से पूछो कि क्या इस किस्म की पेशगोईयों में इंसानी ताकत का दखल है। आशिया, खुदा ताला ने इरादा फरमाया है कि मेरी पेशगोई से सिर्फ इस जमाने के लोग ही फायदा ना उठाएं बल्कि बाज पेशगोईयां ऐसी हों कि आइंदा जमाने के लोगों के लिए एक अजीम शान निशान हों, जैसा कि ब्राहीन अहमदिया वगैरह किताबों की पेशगोईयां कि मैं तुझे 80 बरस या चंद साल ज्यादा या इससे कुछ कम उम्र दूंगा और मुखालिफों के हर एक इल्जाम से तुझे बरी करूंगा और तुझे एक बड़ा खानदान बनाऊंगा और तुझसे एक अजीम शान इंसान पैदा करूंगा और तेरे ताबईन से दुनिया भर जाएगी और वो हमेशा दूसरों पर गालिब रहेंगे और तू हलाक नहीं होगा जब तक के रास्ती के दलाइल को जमीन पर कायम न कर ले और जब तक के खबीस और तय्यब में फर्क पैदा न हो ले और खुदा तुझे इस कदर बरकत देगा कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। मिन हो बाज नादान जिनको तासुब ने अंधा कर दिया है कहते हैं कि अगरचे बाज पेशगोईयां सच्ची निकली, जैसा कि अहमद बेग के फौत होने की और लेख राम के कत्ल किए जाने की और लाहौर के जलसा आजम मजाहब में तकरीर के बाला रहने की और जमाना गुमनामी के बाद करोड़ा आदमियों में शोहरत हो जाने और हजारहा मुखलिस और हमदर्द और खादिम पैदा हो जाने की और दूर दूर से तहाइफ और माल पहुंचने की और डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क के इल्जाम खून के मुकदमे से आखिर बरी हो जाने की और मौलवी मोहम्मद हुसैन के सब वो शतम और बदजबानी के रोके जाने की और साथ इसके इस मुकदमे से बरी होने की और इश्तहार 20 फरवरी 1886 के मुताबिक 4 लड़के पैदा होने की, और जमीमा रिसाला अंजाम आथम के सफ़ा 58 के मुताबिक 4था लड़का उस वक्त पैदा होने की कि अभी अब्दुल हक गजनवी शागिर्द मौलवी अब्दुल्ला साहिब गजनवी जिंदा था, और 3 इब्तला आशिया। ये 3 इब्तला जिनकी आज से 20 बरस पहले बराहीन अम्बिया में खबर दी गई है, उनमें से एक वो है जो डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क ने नाहक झूठा मुकदमा इल्ज़ाम इकदाम खून का मेरे पर दायर किया। इस इब्तला की तरफ बराहीन अम्बिया के सफ़ा 241 में सरी इशारा है। दूसरा वो इब्तला है जो मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने नाहक मेरे पर कुफर का फतवा लिखा और फिर जिल्लत की पेशगोई के उल्टे माने किए और मेरे पर मुकदमा बनाया गया। इस इब्तला की तरफ सफ़ा 510 और सफ़ा 511 बराहीन में इशारा है। और तीसरा इब्तला लेखराम के मुकदमे में हिंदुओं का जोश और नाहक मेरे घर की तलाशी कराना है, जिसका जिक्र बराहीन अम्बिया के सफ़ा 557 में बतौर इशारा है। हाशिया दर हाशिया, आर्यों का मेरे पर बदजन होना ताज्जुब की जगह है,
क्योंकि सबसे पहले तो आर्यों को ही मेरे निशानों का तजर्बा हुआ था।
कादियान के बाद आर्यों को मैंने पेश अज वक्त पंडित दयानंद सरस्वती की मौत की खबर दी कि 6 माह के अंदर फौत हो जाएगा, और खुद इन आर्यों की बाद बलाओं की पेश अज वक्त खबर दी, और फिर बला से रिहाई पाने की पेश अज वक्त खबर दी। इन तमाम इलामात की तफसील बराइन अम्बिया में मौजूद है, और जिनकी नस्बत पेशगोई की गई थी वो भी कादियान में जिंदा मौजूद हैं। उनमें से एक का नाम शरमपत है, वो ज़ात के खत्री और बाजार के चौधरी हैं। शरमपत को मैंने खुदा से इल्हाम पाकर खबर दी थी कि उनके मुकदमे की फौजदारी मिसी चीफ कोर्ट से वापस आएगी, और मातहत अदालत से निस्फ कैद बिशंबर दास उसके भाई की
मेरी दुआ की वजह से मुआफ कर दी जाएगी, मगर बरी नहीं होगा।
मैंने उसको ये भी कहा था कि मैंने आलम कश्म में देखा है कि मैंने नविश्ता कजा व कदर की निस्फ कैद को अपनी कलम से काट दिया है, मगर बरी नहीं किया। लाला शरमपत एक सख्त मुतासिब आर्या दुश्मन इस्लाम है। मेरी तस्दीक के लिए इस कदर काफ़ी है कि लाला शरमपत को औलाद की कसम देकर पूछा जाए कि क्या ये मेरे बयानात सही हैं या गलत।
मिन हो हाशिया दर हाशिया ख़त्म।
गरज बराइन अम्बिया में 3 सख्त इब्तला का बतौर पेशगोई जिक्र था, सो वो 3 इब्तला पूरे हो गए, और शायद इनकी कोई और शाख अभी बाकी हो। मिन हो
हाशिया ख़त्म।
और 3 इब्तला पेश आने की पेशगोई जिसका जिक्र बराइन अम्बिया के सफ़ा 241 और सफ़ा 510 और सफ़ा 511 और सफ़ा 557 में है, ये पेशगोइयाँ सब पूरी हुई, लेकिन आथम की नस्बत पेशगोई पूरी नहीं हुई, और नीज पेशगोई की गई थी कि लड़का होगा लेकिन लड़की हुई, और फिर लड़का हुआ तो मर गया। हाँ, बाद में 4 लड़के ज़रूर हो गए। सो आथम की नस्बत हम अभी लिख चुके हैं कि इल्हामी शर्त के मुवाफिक वो पेशगोई कमाल सफाई से पूरी हो गई। भला तुम ही बतलाओ कि जिस इल्हाम में सरी शर्त थी और क्राइम साबित शुदा ने बतला दिया था कि आथम ने किसी हद तक इस शर्त की ज़रूर पाबंदी की, तो क्या ज़रूर न था कि इस पाबंदी से आथम फ़ायदा उठाता?
क्या खुदा ताला पर तखल्लुफ़ वादा जायज़ है?
क्या रवा है कि वो किसी रियायत और दरगुजर का वादा करके फिर उस वादे का कुछ लिहाज न रखे? यूनस अलैहिस्सलाम नबी के इल्हाम में कोई भी शर्त न थी, तब भी तौबा करने वालों ने अपनी तौबा से फ़ायदा उठाया, फिर आथम सरी शर्त से क्यों थोड़ा सा फ़ायदा ना उठा लेता? क्या तुम कह सकते हो कि आथम ऐसा अपनी ईसाइत के तासुब पर कायम रहा कि कुछ भी खौफ नहीं किया और रुजू की शर्त को छुआ भी नहीं? इस बात पर आफ्ताब की तरह दलाइल चमक रहे हैं कि आथम पेशगोई के सुनने के बाद अपने पहले तासुब और सख्त ज़ुबानी
और आदत मुकाबला इस्लाम पर कायम ना रह सका,
और वो पेशगोई को सुनकर इस कदर दहशत ज़दा हो गया जिस तरह बिजली को देखकर एक बच्चा दहशत ज़दा हो जाता है और अपने अंदर एक तब्दीली पैदा कर ली और गरीब तबाह हो गया। अगर अब भी कोई अपने तासुब और बुखल को ना छोड़े तो बजुज इसके क्या इलाज है कि हम उसको ये बात कहकर छोड़ दें कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। और याद रहे कि लड़की पैदा होना या एक लड़का पैदा होकर मर जाना, इससे इल्हाम को कुछ ताल्लुक न था। इल्हाम ये बतलाता था कि चार लड़के पैदा होंगे और एक को उनमें से एक मर्द खुदा मसीह सिफत इल्हाम ने बयान किया है। सो खुदा ताला के फजल से चार लड़के पैदा हो गए। हमारा कोई इल्हाम ऐसा नहीं है जिसका ये मजमून हो कि पहले अमल में लड़का ही पैदा होगा या दूसरे अमल में जो लड़का पैदा होगा वो जीता रहेगा। हाँ, अगर हमने महज अपने इज्तिहाद से ये ख्याल किया हो कि शायद यही लड़का मर्दाने खुदा में से होगा तो ये इल्हाम इलाही पर इल्ज़ाम नहीं। हम अपनी इज्तिहादी बातों को खता से मासूम नहीं समझते। हमें मुल्ज़म करने के लिए हमारा कोई इल्हाम पेश करना चाहिए। इज्तिहादी गलती नबियों और रसूलों से भी हो जाती है जिस पर वो कायम नहीं रखे जाते। ज़रा सही बुखारी को खोलो और हदीस ज़हबा वहली को गौर से पढ़ो। ऐसा इतराज़ करना जो दूसरे पाक नबियों पर बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही एतराज़ आवे, मुसलमानों और नेक आदमियों का काम नहीं है बल्कि लानतियों और शैतानों का काम है। अगर दिल में फसाद नहीं तो कौम का तफरीका दूर करने के लिए एक जलसा करो और मजलिसे आम में मेरे पर एतराज़ करो कि फलां पेशगोई झूठी निकली। फिर अगर हाजरीन ने कसम खा कर कह दिया कि फिल वाक़या झूठी निकली और मेरे जवाब को सुनकर मुदल्लल बयान और शरई दलील से रद्द कर दिया तो उसी वक्त मैं तौबा करूँगा, वरना चाहिए कि सब तौबा करके इस जमात में दाखिल हो जाएँ और दरिंदगी और बदजुबानी छोड़ दें।